नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। 5 ग्राम तो क्या, बिना युद्ध किए इस राज्य की सुई के अग्रभाग पर थरथराते हुए धूल के कण के बराबर भी कोई भाग पांडवों को नहीं मिलेगा। कोई भाग नहीं मिलेगा, कोई भाग नहीं। दुर्योधन,
युद्ध से किसी की भी समस्याएं सुलझेंगी नहीं। युद्ध से मानव जाति का कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। जीवन का अंतिम ध्येय है प्रकाश, ज्ञान का, विज्ञान का, आत्मा का प्रकाश। और यदि वो प्रकाश तुम सबको युद्ध की मृत्यु में ही प्राप्त होने वाला हो, तो मैं कृष्ण यथा आवश्यक भयंकर युद्ध प्रज्वलित करूंगा। ये युद्ध संसार को तुम्हारे अहंकार, पथ भ्रष्टता, कपट, कौर्य, प्रतिशोध जैसे राक्षसी विकारों की कथा पीढ़ियों तक सुनाता रहेगा।
सभी चुप थे, मानो वाणी मूक हो गई। कृष्ण जिस शांत चाल से आए थे, उसी शांत चाल से बाहर चल दिए। उनको विदा करने सभी उनके पीछे पीछे राजभवन के महाद्वार तक आए। कर्ण भी उठकर उन्हें पहुंचाने महाद्वार तक आकर खड़े थे। भवन की देहरी पार करते हुए कृष्ण क्षण भर रुके, पीछे मुड़कर सबको प्रणाम किया। कर्ण भी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े थे। अघटित घटित हुआ था, क्या और भी कुछ घटित होने वाला था? कर्ण आओ, ये कहकर कृष्ण ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में ले लिया, दरूक को पीछे बिठाया और कर्ण को हाथ पकड़कर रथ में चढ़ाया और रथ के चपल घोड़ों की वलगाओं को विद्युत गति से आगे बढ़ा दिया। उनके रथ चक्रों के साथ कर्ण के विचार चक्र दौड़ रहे थे। वायु के साथ कृष्ण का पीताम्बर कर्ण को स्पर्श कर रहा था। एक घने वृक्ष के पास आते ही कृष्ण ने रथ की गति धीमी कर दी और एक घने वट वृक्ष की छाया में चल पड़े।
कर्ण, भारी आघात देने वाला एक सत्य बताने के लिए ही मैं आज सभी लोगों के बीच से केवल तुम्हें नगर से बाहर लेकर आया। उस अस्त होते हुए सूर्य देव के तेज को देखो और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो।
कहो यादव राज, धरती इधर से उधर भले ही हो जाए, परंतु मुझे अब कोई आघात नहीं लग सकेगा।
कर्ण, कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो, राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो,